Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيَّنَا وَشِفَاءَ صُدُورِنَا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا, ارشاد ربانی ہوا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور وہ جو ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, خوشخبری ہے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں, الا ان اولیاء اللہ, یہ اللہ کے ولی, اور ایک اور مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان والوں کا, اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اور اس میں فرمایا یہ اللہ کے ولی, پتہ چلا یہ اللہ کے ولی, اللہ ان کا ولی. ایک اور مقام پر فرمایا یحبہم ویحبونہ, یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا. ایک دوسرے مقام پر فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا. ایک اور مقام پر فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اب نتیجہ کیا نکلا, یہ اللہ کے ولی, اللہ ان کا ولی, یہ اللہ کے محبوب, اللہ ان کا محبوب, یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ ان کا ذکر کرتا ہے, یہ اللہ کے ہو گئے, اللہ ان کا ہو گئے. گویا اللہ نے ان کو اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کی چادر میں لے لیا, عظمت اور کبریائی کی چادر میں لے لیا. فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی, میرے ولی میری چادر کے نیچے ہیں, انہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا, میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا. اور یہ حقیقت ہے کہ ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہے, ولی کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. کیوں؟ ولی کبھی نہیں کہتا میں ولی ہوں. کسی ولی نے کہا میں ولی ہوں, مجھے مانو میں ولی ہوں, مجھے مانو میری کرامت ہے, یہ ہے یہ ہے, میں اس مقام پر. کبھی کہا نہیں, میں تو ایک عاجز بندہ ہوں, میں تو گناہگار ہوں, میں تو سیاہکار ہوں, اور ہے اللہ کا ولی. نبی کو پہچاننا آسان ہے, ولی کو پہچاننا مشکل. نبی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ. کیوں؟ اگر نبی نہیں کہے گا تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا یہ اللہ کا نبی. ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تاکہ لوگ قریب آئیں, ایمان لائیں, اپنا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, اور میرے آقا تشریف لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی نے اپنا کلمہ پڑھوایا اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے مانو. کسی ولی نے کہا مجھے مانو میں ولی ہوں؟ نہیں. ولی کو پہچاننا بڑا مشکل. اب ولی کو پہچانے کیسے, ولی کو کیسے پہچانے؟ تو آؤ بارگاہ رسالت میں چلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی کی پہچان بتا دی, ولی کی نشانی بتا دی, پہچان بتا دی. سرکار کا دریائے کرم جوش میں, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہیں. فرمایا حل انبئکم بخیارکم, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے ہمیں بہترین لوگ کون ہیں. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں, ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا, چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. یہی ولی اللہ کی پہچان, اللہ کے ولی کی پہچان, اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے, محفل میں بیٹھو تو اللہ یاد آ جائے, ارے ذکر کر لو تو اللہ یاد آ جائے. اور یہ اللہ کی پہچان بتائی جا رہی. نبی اور ولی دونوں کا ایک اپنا اپنا مقام ہے, مرتبہ ہے. نبی وہ ہے جو خدا سے نور لیتا ہے, اور ولی وہ ہے جو نبی سے نور لیتا ہے. نبی وہ ہے جو خدا کا نائب ہے, ولی وہ ہے جو نبی کا نائب ہے. نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے, اور ولی وہ ہے جس کے قلب پر القا ہوتا. نبی وہ ہے جس سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے, اور ولی وہ ہے جس سے کرامات کا ظہور ہوتا. یہ سب اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر, لیکن ولی کو پہچاننا مشکل, ولی کو پہچاننا مشکل. کیوں؟ اب آپ دیکھیں یہاں کتنے ولی بیٹھے ہیں, ہم پہچان رہے ہیں ان کو, یہ سارے ولی ہیں نا. जितने वली यहाँ बैठे हैं, अरे वली के माना दोस्त, वली के माना साथी, वली के माना सरपरस्त। एक माना नहीं है वली का, वली के माना दोस्त, वली के माना साथी, वली के माना सरपरस्त। नमाज जनाजा होती है ना, तो जो इमाम होता है हाथ उठाने से पहले, नियत बांधने से पहले पूछता ना, इसका वली कौन है? पूछता नहीं पूछता, क्यों? उसकी इजाजत से पढ़ाएगा, तो वो भी तो वली होता है ना। तो आप लोग वली नहीं है क्या? है ना वली, किसी ना किसी माना में तो वली है ना। अब वलीउल्लाह ना हो तो बात अलग है, खैर हो जाएंगे, जब वलियों के दरबार में आएंगे तो हो ही जाएंगे, और हो सकता है हो भी अपने आप को छुपाए बैठे हो, इतने छुपाते कि गर्दन ही झुका लेते हैं कि कोई देखे ही नहीं हमें, ये सारे अल्लाह के वली यहां बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वली छुपाता है, नबी जाहिर करता है, और सरकार ने निशानी बता दी, चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए, चेहरा देखो अल्लाह याद आ जाए। वली की एक और निशानी है हदीस कुदसी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहु अम्मा नवालहु इरशाद फरमाता है, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, नवाफिल के जरिए बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता, मैं उसे अपने करीब कर लेता। अच्छा, जब बंदा करीब हो जाता है और अल्लाह तबारक व ताला उससे मोहब्बत करने लगता है, तो अल्लाह फरमाता है, जिब्रील ये बंदा जो जमीन के फला मकाम पर रहता है, ये मेरा महबूब है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। सरकार फरमाते, फिर जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगता। फिर इरशाद रब्बानी होता है, ये मेरा बंदा जो जमीन के फला मकाम पर रहता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं। अब आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर दो कि आसमान के फरिश्ते भी इससे मोहब्बत करें, फिर आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते। फिर और आगे फिर ऐलान होता है, ये फला बंदा जो जमीन के फला मकाम पर रहता है, इससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, आसमान के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। आप फरिश्तों को हुक्म है कि जमीन पर उतर जाओ और जमीन वालों से कहो कि इससे मोहब्बत करें। फिर सरकार फरमाते, फिर जमीन वाले भी मोहब्बत करने लगते। तो फरिश्ते जब जमीन पर उतरते हैं तो क्या एक एक को पकड़कर कहते हैं इससे मोहब्बत करो? क्या किसी के कान में कहते हैं मोहब्बत करो? नहीं, उनके कहने का अंदाज क्या है? फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देते, लोगों के दिलों में पैदा कर देते हैं। और जब लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है, फिर कैफियत ये होती है, फिर काफिले बगदाद की जानिब जाते हैं, काफिले अजमेर की तरफ जाते हैं, काफिले कलियर की तरफ जाते हैं, पाकपट्टन की तरफ जाते हैं, कचौचे शरीफ की तरफ जाते हैं। ये उसी मोहब्बत का नतीजा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहु अम्मा नवालहु की जानिब से फरिश्ते लोगों के दिलों में पैदा करते हैं। अच्छा, मोहब्बत होती कैसे है? अब आप सब यहां बैठे हैं, गौस पाक की मोहब्बत में बैठे हैं ना, ग्यारहवीं शरीफ हो रही है, और सिर्फ यहां नहीं पूरी दुनिया में हो रही, बड़ी ग्यारहवीं शरीफ बगदाद में हो रही, पूरी दुनिया से काफिले पहुंचे हैं, पाकिस्तान से 400-500 आदमी पहुंचे, हिंदुस्तान से गए, हॉलैंड से गए, इंग्लैंड से गए, साउथ अफ्रीका से गए, दुनिया से लोग जा रहे। क्यों जा रहे हैं? किसी ने गौसे आजम को देखा? जितने लोग वहां गए हैं उनमें से किसी ने देखा? या चलो उनकी बात छोड़ो, जितने यहां बैठे हैं वो बता दें मुझे, जितने भी यहां बैठे हैं किसी ने गौसे पाक को देखा? और एक और बात पूछ लूं, देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? सारे नहीं देखना चाहते। तो फिर अपने कल्ब को गुनाहों के आलूदगी से पाक और साफ कर लो। जब कल्ब साफ हो जाएगा, गौस का दीदार हो जाएगा, फिर गौसे आजम क्या, रसूल आजम भी दिल में आ जाएंगे। किसी ने देखा नहीं लेकिन मोहब्बत है, ग्यारहवीं शरीफ कर रही, पूरी कराची में जगह जगह हो रही है, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह हो रही है, पूरी दुनिया में जगह जगह हो रही है। अरे इन ग्यारहवीं करने वालों से पूछो, तुमने देखा भी है? मोहब्बत तो जब होती जब देखे। कोई हुस्नो जमाल का तालिब है, कोई फजलो कमाल का तालिब है, कोई जाहो जलाल का तालिब है, कोई हुस्नो जमाल का तालिब है। तुमने हुस्न देखा नहीं, मोहब्बत वैसे ही बगैर देखे कैसे मोहब्बत? देखा नहीं ना, लेकिन मोहब्बत में बैठे हैं या नहीं? देखा नहीं लेकिन मोहब्बत में बैठे। अपनी मेहनत कोशिश के पसीने की कमाई उनकी याद में लुटा रहे। देखा नहीं, मोहब्बत है। लेकिन हमारे पास तो एक जवाब है, अगर कोई हमसे पूछे तो हमारे पास एक दलील है, और आपके पास भी यही दलील होगी, लेकिन अभी आपके जहन में नहीं। जब मैं डालूंगा तो आपके जहन में आ जाएगी। सब कहेंगे हाँ हम भी यही कह रहे थे। हालांकि वैसे पूछ लो तो पता नहीं। सवाल यह है कि गौसे आजम को देखा नहीं तो कैसे मोहब्बत? मोहब्बत तो देखकर होती है ना, बगैर देखे कैसे मोहब्बत? सुनी सुनाई बातों पे मोहब्बत, किस्सा सुन लिया तो मोहब्बत हो गई, करामत सुन ली तो मोहब्बत हो गई। हमारे पास दलील यह है कि हमने गौस को नहीं देखा, हमने अपने पीर को देखा है। जब ये ऐसे हैं तो वो कैसे होंगे? है ना ये बात? हमने उनको देखा, हमने अपने पीर के हुस्न जमाल को देखा, उनके जाहो जलाल को देखा, उनके फजलो कमाल को देखा, उनके जूद नवाल को देखा, उनकी शफकत और मोहब्बत को देखा, और ये देखा कि ये उनकी 27वीं पुश में है। जब 27वीं पुश में ये हाल है तो जो असल है उनका क्या हाल है? ये बात, ये दलील हमारे पास। जब औलाद ऐसी है तो वो खुद कैसे हो? 27वीं पुश में ये कैफियत है कि कल्ब में जो कैफियत है वो मुनकशिफ हो गई। पास जाओ जो बात हुई फौरन दिल में आ गई। अभी मैं लाहौर गया, यामीन अशरफी साहब वाली साहब के एक मुरीद, एयरपोर्ट पर होते आप लोग भी जानते, तो मुझे बताने लगे, ऐसे जिक्र आया कि मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हो रहा था, तो मैं यहाँ चौरंगी पर उतरा, वहां से मिठाई खरीदी, बर्फी मैंने ली, तो फिर मैंने कहा जरा मुझे चेक करा दो, चेक करा दो। उसने कहा क्यों चेक करने की क्या जरूरत है? कहा इसमें खोया होता है, सड़ जाता है अक्सर, तुम लोग रखी भी दे देते हो, मैं अपने पीर के लिए लेके जा रहा हूँ। मैंने उसके लेकर चखा, थोड़ा सा खा कर देखा, चेक किया, सूंगा हाँ सही है, चेक करके मैं ले आया। कहते हैं हजरत अशरफुल मशाई यहाँ बैठे थे व्हील चेयर पर, इधर रौनक अफरोज थे, मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आया, मैंने हुजूर की खिदमत में पेश की, फरमाया चेक करके लाए हो। किसने बता दिया? कश्फ कल। तो जब गौस की औलाद का यह हाल है तो गौस का क्या हाल हो? 27वीं पुश में यह कैफियत है तो उनकी क्या कैफियत होगी? यही वजह है कि बुजुर्गाने दीन ने और यह कामरी ने लिखा, गौस की जात से करामात का जहूर इस तरह होता था जैसा कि तजबी टूट जाए और दाने बिखरते हैं, इस तरह करामात जाहिर होती। मुजस्सम करामत थे सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी हसनी अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला, और उन्होंने अपनी करामा से बता दिया, जब मेरी ये शान है तो फिर आका की क्या शान हो, जब वली का ये मकाम है तो फिर नबी का क्या मकाम हो। तो हमने नहीं देखा है लेकिन हमने इनको देखा तो उनको पहचान लिया। और एक और बात और है, हमने डायरेक्ट नहीं देखा, इनडायरेक्ट देखा। गौस को डायरेक्ट नहीं देखा, आप में किसी ने देखा? नहीं देखा, लेकिन अपने पीर मुर्शिद को देखा, हजरत अशरफुल मशाइख को देखा, और अशरफुल मशाइख ने कुतुब रब्बानी को देखा, उन्होंने आला हजरत अशरफी मियां को देखा, उन्होंने सिलसिला चलते हुए मखदूम समनानी तक पहुंचा, उन्होंने अलाउद्दीन गंजेनाबाद को देखा, उन्होंने अखी सिराज आईना हिंद को देखा, उन्होंने महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को देखा, उन्होंने बाबा फरीद को देखा, बाबा फरीद ने कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखा, उन्होंने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को देखा, उन्होंने उस्मान हारूनी को देखा, और फिर सिलसिला चलता गया, उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा। तो ये देखने वालों का सिलसिला चल रहा है। हमने किसी को नहीं देखा, सिर्फ अपने पीर को देखा, उन आंखों को देखा जिन आंखों ने उनको देखा। اور ایک اور خوشخبری سنا دوں، بڑی پیاری خوشخبری ہے. غوث اعظم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا طوبی لمن رانی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. لیکن خوشخبری کس کی؟ جنت کی. غوث نے فرمایا جنت کی بشارت ہے اسے جس نے مجھے دیکھا، پھر فرمایا اور اسے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، پھر اور دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا اور اسے جس نے اس دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، پھر اور دریائے کرم جوش میں آیا، پھر یہ جملہ 7 مرتبہ فرمایا، پھر اس کو دیکھا، پھر دیکھنے والے کو دیکھا، دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، 7 مرتبہ فرما دیا. کس نے فرمایا؟ غوث اعظم. پہلی مرتبہ تم جس نے مجھے دیکھا، پھر میرے دیکھنے والے کو، پھر دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو، پھر اس دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو، 7 مرتبہ. اب اٹھا لو اپنا شجرا، کون سا؟ معمریا منوریا سلسلہ تو زہب. اس میں جو بزرگوں کی فہرست ہے، اچھا ویسے شجرا اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو اتنا لمبا شجرا ہو گیا، غوث نے تو 7 مرتبہ فرمایا، اور اگر ہم ویسے شجرا دیکھیں تو 40واں نمبر ہمارے پیر مرشد کا، تو ہم دیکھنے والے تو 41 ہوئے، دیکھنے والے تو 41 ہوئے نا، اور غوث نے 7 مرتبہ فرمایا. اب سلسلہ تو ذہب اٹھا لو، وہ شجرا تھوڑا، اس میں نام کم ہے، اور نام کم کیوں ہے؟ کہ عمریں زیادہ ہیں، ایک کی عمر 500 سال تو دوسرے کی 300 سال. ان کی جب فہرست ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں دیکھو تو حضرت غوث العظم کے بعد حضرت شاہ دولہ گجراتی، ان کے بعد حضرت شاہ منور الہ آبادی، پھر حضرت شاہ ملا اخون رامپوری، پھر حضرت شاہ امیر کابلی، پھر حضرت شیخ المشائخ ابو احمد سید شاہ علی حسین اشرفی میاں، اس کے بعد قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی، اور پھر ہمارے پیر و مرشد اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ من قدو. جب ہم یہ فہرست لے کر چلتے ہیں تو 7واں نمبر آتا ہے پیر و مرشد اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ، اور کہاں؟ جس نے ان کو دیکھا وہ بھی جنتی. ہم اس میں شامل ہو گئے یا نہیں؟ اور اس 7ویں کا دیکھنے والا بھی جنتی ہے، تم بھی اس میں شامل ہو. کیا مطلب؟ اگر شریعت پر استقامت کے ساتھ رہو تو جو تمہیں دیکھے وہ بھی جنتی. یہ میرے غوث کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. اب ہو گئے جنتی یا نہیں؟ سارے نہیں ہوئے کیا؟ تو پھر بول کیوں نہیں رہے؟ کوئی ان کو یقین ہو گیا واقعی ہو گئے صدیق صاحب. خیر بہرحال ہمیں تو یقین ہے، اس لیے کہ گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، لیکن غوث کا دامن ہاتھ میں چلے جائیں گے، لے جائیں گے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اعمال پہ بھروسہ نہیں، نسبت پر بھروسہ. اعمال پہ بھروسہ نہیں، نماز روزہ زکات کچھ نہیں، لیکن نسبت پہ بھروسہ. تو بات کہاں سے چلی کہ ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی محبت میں جمع ہے، دیکھا نہیں نا لیکن محبت میں جمع ہے. یہ محبت وہی ہے جو فرشتوں نے دلوں میں پیدا کر دی. جو بغداد پہنچے انہوں نے نہیں دیکھا، جو یہاں بیٹھے انہوں نے نہیں دیکھا، پوری دنیا میں جہاں جہاں غوث کے ماننے والے کسی نے نہیں دیکھا، مگر محفل منعقد کر رہے ہیں. اس لیے خدا چاہتا ہے ان کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو، اور نہ صرف چاہتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر محبت پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے کسی کو 900 سال، کسی کو 1000 سال بزرگان دین کو اس دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، مگر آج بھی یا غوث آدم دستگیر کے نعرے لگ رہے، یا غریب نواز کے نعرے لگ رہے، یا مخدوم سمنانی کے نعرے لگ رہے، یا داتا گنج بخش علی اجبیری کے نعرے لگ رہے. یہ وہی محبت ہے جو فرشتوں نے دلوں میں پیدا کی، اس محبت کی وجہ سے یہاں موجود ہے، اس محبت کی وجہ سے. ارے دنیا کا حال تو یہ ہے کہ آج مری کل بھول گئے، کسی کو 10 دن یاد رکھا، کسی کو 20 دن، کسی کو 40 دن، کسی کو 1 سال، بہت ہوا تو 1 سال، اس سے زیادہ نہیں. چلو کسی کو اور زیادہ رکھا، 2 سال اس کی برسی کر لی، ختم، بھول گئے. کبھی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھنا نصیب نہیں جاتے، حالانکہ سرکار دوارا مرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، मैं तुम्हें कब्रों की जियारत से मना करता था, अब हुक्म देता हूं जियारत करो, तुम जाओगे अपनी कब्र याद आएगी, वहां जाकर उनको सलाम करो, अहले कुबूर जो हैं उनके लिए दुआ करो, कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो सलाम करो। ये सारी हदीस मौजूद है, लेकिन कभी जाते हैं? कभी हाथ उठाकर पढ़कर अपने मरहूमीन को, अजीज व कारिब को, वालदैन को बख्शते हैं? नहीं। हाँ, शबे बारात में चले गए, बड़े एहतमाम से चले गए, और वहां भी जाकर बड़ा लतीफा होता है, साल में तो गए नहीं, अब वहां पहुंच गए, अब जाके फातह पढ़ोगे, नहीं नहीं अब्बा की खबर ये नहीं है वो है, दूसरे का चाहिए, वहां जाके नहीं नहीं एक दरख्त था, अरे दरख्त क्या मौजूद रहेगा पूरी उम्र, हो सकता है काट दिया हूं और दरख्त की निशानी लगा ली, दरख्त है ही नहीं, पता चला कब्र गायब, फिर कह रहे नहीं वो उस मकाम पर थी, वो दूसरा भाई कह रहे उस मकाम पर थी, ढूंढ रहे हैं कब्र, अब्बा की कब्र ही नहीं मिल रही, ये तो हाल है हम लोगों का, कभी जाओ तो मिलेगी ना, और जब वापिस आ रहे हैं तो फिर गोरखन को बुरा भला कहता हूँ, ये इसने बदला होगा जरूर, इसने निकाल के हड्डियां फेंक दी होंगी, दूसरी कब्र बना दी होगी, हमारे अब्बा तो यही थे, वो अब्बा तो पता नहीं कहाँ चले गए। अगर जाते रहो पूरे साल तो याद रहेगी ना, जाकर फातिहा पढ़ते रहो तो याद रहेगी? नहीं। ये दुनिया का हाल, ये दुनिया वालों का हाल है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनकी कैफियत ये है कि मजार तो बगदाद में है, बैठे यहां उनकी याद में, मजार अजमेर में है, मजार कलियर में है, मजार बागपट्टन में, लाहौर में है, मजार मेहरौली में है, मजार कचौटी शरीफ में है, याद यहां मनाई जा रही, ये उसी मोहब्बत का नतीजा है, ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं अल्लाह इनसे मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं अल्लाह इनसे मोहब्बत करते हैं, और जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो वो चाहता है सब इनसे मोहब्बत करे, ये मेरा महबूब है, ए जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो, आसमान के फरिश्तों से कहो वो भी मोहब्बत करें, और न सिर्फ आसमान के फरिश्ते बल्कि वो फरिश्ते जमीन पर उतर जाएं और जमीन वालों से कहें मेरे इस बंदे से मोहब्बत करो, फिर जमीन वाले मोहब्बत करते हैं, कितना अरसा गुजर जाए उनकी मोहब्बत कम नहीं होती बढ़ती रहती, दुनिया वाले मर जाएं जितना अरसा गुजरता है लोग भूल जाते हैं, अल्लाह का वली दुनिया से जाए जितना अरसा गुजरता है उसके तसर्रुफात और बढ़ते, उसकी मोहब्बत और बढ़ती है, पूरी कायनात में ग्यारहवीं शरीफ हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है, जगह जगह ग्यारहवीं शरीफ हो रही, उसी मोहब्बत का नतीजा। फिर एक और हदीस, यह भी हदीस कुदसी, नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, फकुंतु समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, वह बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, वह लिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता, फिर वो बंदा खुदा नहीं हो जाता, खुदा की सिफात का मजहर होकर हर जगह से सुनता है, हर जगह देखता। ये हदीस शरीफ उन सारे सवालात का जवाब है जो मुखालिफीन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन पर करते, मसलन हम कोई करामत बयान करें, गौसे आजम की करामत बयान करते, ये कैसे हो सकता है, इतनी दूर कैसे देख लिया, दिल के हाल पर कैसे मुत्तला हो गए, बाखबर हो गए, और गौस का इरशाद देखो, बहजतुल इसरार में फरमा रहे, तुम सब लोग मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह हो, गौसे आजम फरमा रहे शीशे की बोतल की तरह हो, जिसका जाहिर बातिन सब सामने होता है, ऐसे तुम लोग मेरे सामने हो, तुम्हारा जाहिर बातिन सब मेरी निगाहों के सामने, क्या मतलब, जो तुम्हारी जबान पर है वो भी मैं जानता हूं, जो तुम्हारे दिल में है वो भी मैं जानता हूं, ये है फकुन तो बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। अब वो कहते कैसे देखता है, हम कहते बताओ अल्लाह हर जगह देखता है या नहीं, अल्लाह तबारक बताला हर जगह देखता है या नहीं, अच्छा उसके देखने के लिए दूर या नजदीक की कोई कैद है कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, दूर ना देख सके और करीब देखे, कोई कैद है नहीं, जैसे वो दिन की रोशनी में देखता है ऐसे ही रात की तारीकी में देखता है, जैसे वो करीब देखता है ऐसे ही वो दूर भी देखता है। जब खालिक कायनात हर जगह यकसा देखता है तो जब बंदा उसकी इस सिफत का मजहर हो जाता है तो सिफत का मजहर होकर वो भी हर जगह देखता है, फिर उसके लिए भी करीब और बाई दूर और नजदीक कोई चीज नहीं रहती, जहां चाहे जब चाहे देखता। ऐसे उसके सामने लोगों के कुलूब मुनकशिफ हो जाते हैं, उनके कल्ब का हाल मुनकशिफ हो जाता है। शेख अबुल बका फरमाते, मैं एक जगह से गुजर रहा था, बाजार में निकला कुछ चीज खरीदने के लिए, गुजरते गुजरते गौस की खानका के पास से गुजरा, देखा कि जमात खड़ी हो रही, इकामत हो रही और गौसे आजम इमामत फरमाई, बड़ी सआदत की बात है, गौस के पीछे नमाज पढ़ रही। फौरन मस्जिद में गया, तोड़ कर गया, जल्दी से नियत बांध, ये याद ही नहीं रहा कि वुजू किया भी है या नहीं, बगैर वुजू नमाज हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, कुछ लोग पढ़ते हैं शायद बगैर, पढ़ना नहीं हो जाएगी, होगी नहीं होगी ना, शुक्र। किसी से पूछा कि बगैर वुजू नमाज हो जाती, कहां हो जाती, उन्होंने कहा यार बगैर वुजू, कहां हो जाती, कैसे हो जाती, कहा मैंने कल पढ़ी थी हो गई थी। ऐसा तो कोई नहीं है जिसने पढ़ ली हो फिर कहते हो कि हो गई। एक बुजुर्ग ने एक आदमी को नमाजी बनाने के लिए, अब अपने अपने तरीका है ना तबलीग का, उन्होंने कहा नमाज पढ़ो, नहीं हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकता, अच्छा तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हें एक इनाम मिलेगा, एक इनाम मिलेगा तुम्हें, कहीं से भी इनाम मिलेगा, ऐसे ही कह दिया। उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, कहा 40 दिन नमाज पढ़ के बताओ। ये सोचा कि जब 40 दिन पढ़ेगा तो खुद बखुद नमाजी हो जाएगा, 40 दिन मुसलसल पढ़ेगा तो नमाजी हो ही जाएगा। वो आगे 40 दिन पढ़ के इनाम, कहा कहे का इनाम, कहा आपने कहा था 40 दिन नमाज पढ़ो तो इनाम मिलेगा, कहा मैंने तो ऐसे ही तुम्हें कहा था ताकि तुम 40 दिन पढ़ोगे तो नमाजी बन ही जाओगे, हाँ मुझे पहले ही शक था इसीलिए मैंने सारी बगैर वुजू पढ़ी, वुजू किया ही नहीं, मुझे शक था यही मसला होगा, तो ऐसे नहीं करना कभी बगैर वुजू नहीं पढ़ना। खैर वो शेख अबुल बका जो गए वो तो खैर एक भूल हो गई, निस्यान हो गया, जमात खड़ी हो रही है, गौसे आजम इमामत कर रहे, जल्दी से आके नियत बांध ली, सलाम फेरा, दुआ हुई, सब हाथ मिलाते इमाम से, हाथ मिलाते ना, हाथ मिलाया, गौसे आजम ने हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, अब ये घबराए, करीब करके कहा साहबजादे तुम पर निस्यान तारी है, आज वुजू करना भूल गए। हाथ मिला के गौस ने बता दिया कि वुजू नहीं है। कोई बता सकता है, बताएगा क्या, अपने वजू नहीं होता दूसरे का क्या बताए। इसलिए गौसे आजम की शान ये है, एक निगाह डाली जाहिर और बातिन सब देख लिए, जाहिर और बातिन, फरमाया तुम सब लोग मेरे सामने शीशे की बोतलों की तरह हो, शीशे की बोतल सामने हो ना उसके अंदर जो कुछ हो नजर आता है, तुम्हारे अंदर जो है मुझे नजर आ रहा है। ये गौसे आजम का इरशाद, ये निगाह कब मिलती है, जब अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता, हर जगह से सुनता है, जहां से पुकारे सुनता है। अब वो कहते तुमने गौसे आजम की करामत बयान की, फलाने पुकारा वो पहुंच गए उन्होंने मदद कर दी, अरे इतनी दूर से कैसे सुन लिया, क्या मोबाइल पे कहां था, गौसे आजम मदद कीजिए, उन्होंने मोबाइल पे जवाब दे दिया हाँ मैं आ रहा हूं, मोबाइल तो था ही नहीं, कैसे सुन लिया। वुजू फरमा रहे एक जगह बैठे गौसे पाक, वुजू फरमा रहे, अचानक अपनी खड़ा में जूतियां उठाकर फेंक दी, मुरीदों ने देखा कि जूतियां कहां फेंकी, वो भी गायब, जूतियां भी गायब हो गई, जो खड़ावें थी लकड़ी की गायब हो गई, वो हैरान हो गए कहां फेंकी कहां गई, अरे यहां फेंकते तो नीचे गिरती ना, वो तो ऊपर ही चली गई। 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक काफिला आया आप अपनी खानकाह में, कहा हुजूर कुछ लोग आए मिलना चाहते हैं, बुला लो, वो आपकी जूतियां भी लेकर आए खड़ावे भी लेकर आए, मुस्कुराए फरमाया बुला लो, बुला लिया, कहा हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी करम फरमाया आपने मदद की, ये आपकी नालैन पाक ये आपकी जूतियां। मुरीदीन हैरान के क्या वजह है, कहां फेंकी इनको कहां मिली, ये कहां से लाए, पूछो इनसे, कहा हम फला मकाम से गुजर रहे थे, डाकुओं ने हमला किया हमें मारने लगे, माल लूटने लगे, हमने वहीं से पुकारा या गौसल आदम दस्तगीर, मदद कीजिए। हमने देखा हजरत की जूतियां उड़ती हुई आई, उनके सरों पर पड़ी, वो सब भागे, वो अपना सर बचा बचा के भाग रहे, ये कहां से आ गए, जख्मी कर दिया वो भाग गए। हमने माल बाप समेटा, ये जूतियां उठाकर चूमी हम लेकर आ गए। दूर से सुना या नहीं सुना, कैसे सुना, बगैर मोबाइल के सुना, बगैर इंटरनेट के सुना, बगैर किसी जाहिरी जरिए के सुना, कैसे सुना। फकुन तो समा उल्लजी यस्मा बेई, अल्लाह फरमाता मैं कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता। जब अल्लाह हर जगह से सुनता है तो बंदा उसकी सिफत का मजहर होकर वो भी हर जगह से सुनता, ये है गौस की शान। फिर वली की एक शान ये भी है कि वली नमूद नुमाइश नहीं करता, इश्तेहार नहीं लगाता कि मेरे पास आओ। आज देखो ना जगह जगह इश्तेहार लगे, अजीब अजीब किस्म के जुमले लिखे हुए, प्रोफेसर फला और फला, प्रोफेसर और फला जोगी और फला गोगी, पाशा क्या पता नहीं क्या क्या लगे हुए ना, तीन अट्टी पे चले जाओ, फला जगह चले जाओ, सारे लगे हुए, आ जाओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। जिसके अंदर कुछ नहीं वो बुला रहा है हमारे पास आओ, और जिसके अंदर सब कुछ है वो तन्हा बगदाद में बैठ गया, मखलूक वहीं चली गई। गौसे आजम ने कोई इश्तेहार लगाया, गरीब नवाज ने अजमेर में इश्तेहार लगाया कि आओ अजमेर में, तने तन्हा अजमेर पहुंचे, चंद मुरीदों के साथ पहुंचे। कोई चिल्ला जो वैसा चिल्ला होता है, वो अपना चिल्ला तो किया था, जो चिल्ला इधर उधर वो नहीं किया, अजमेर में पहुंचे 99 लाख हिंदुओं को मुसलमान कर दिया। ये अल्लाह के वली की शान है, बुलाया नहीं, मखलूक खुदा खुद पहुंच गई। जिस वली की हिस्ट्री उठाओ, तने तन्हा पहुंचे, वो जंगल मंगल हो गया। गौसे आजम बगदाद में, गरीब नवाज अजमेर में, साबिर पाक कलियर में, दाता साहब लाहौर में, बाबा फरीद पाक पट्टन में, मखदूम साहब कचौचे में, और हजरत कुतुब रब्बानी यहां कराची में। जब पहुंचे कुछ नहीं था, लोगों ने कहा हजरत ये जगह आपने पसंद की, कौन आएगा, फरमाया मेरे आने की देर है, मैं इस जमीन में आ जाऊंगा ये जंगल मंगल बन जाए। आज ये रौनक है या नहीं, ये जितनी रौनक है उन्हीं के दम कदम से। इस जमीन में अल्लाह के दो वली आराम फरमा हैं, फैज ही फैज है, करम ही करम है, रौनक ही रौनक। जो असल है वो बुलाता नहीं है, मखलूक खुद पहुंच जाती, खालिक कायनात भेजता, और जो नकल है वो बुलाते, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, इश्तेहार छाप रहे, लोगों को भेज रहे, बुला रहे, आ जाओ, नमूदो नुमाइश नहीं। और ये हर दौर में होते। गौसे आजम के जमाने में एक साहब थे जो शेर पर सवारी करते थे, शेर पर। अब शेर पर सवारी करना तो मामूली बात नहीं, शेर को काबू करना, फिर उसके ऊपर बैठना। अक्सर तो ऐसा हुआ कि जो आमतौर पर जो शेर को पालते हैं, शेर उनसे मोहब्बत करता है, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो दरिंदा है, उसकी फितरत है चीर फाड़ करना। अक्सर ऐसा हुआ जिसने बचपन से पाला, साउथ अफ्रीका का भी वाकया, बचपन से जिसने पाला उसको बड़ा एतमाद था, मुझे नहीं खाएगा, कभी उसकी गर्दन में हाथ डाल के बैठा, फोटो खिंचवा रहा, कभी उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, कभी कुछ अजीब अजीब तस्वीरें अखबार में छप रही। एक दिन शेर साहब को खाने में देर हो गई, अब ये पहुंच गया उसी एतमाद में, ये तो मैंने तो इसको पाला, ये नहीं पता वो तो दरिंदा है, ये जाके उसके गले में हाथ डाला, उन्होंने अच्छी तरह हाथ डाल दिया, पूरी तरह चीर फाड़ करके एक तरफ कर दिया, खा गए। उन्होंने कहा इन्हीं को मैं खा लूं, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो खाना चाहिए, और इंसानी गोश्त तो वैसे भी लजीज है, नमकीन। पहले तो वो गाय का गोश्त देते थे, जानवरों का देते थे, वो इंसानी को खा गया बेचारा, जिसने पाला उसी को खा गया, तो शेर की तो फितरत है। लेकिन गौस पाक के जमाने में एक वली थे शेख अहमद, वो शेर पे सवारी करते, और क्या करते थे, जहां भी जाते शेर पे बैठकर जाते, जो दावत करता हजरत शेर पे बैठ के आ रहे। अब हजरत तो खाए कम और शेर खाए ज्यादा, अब उनके लिए तो कम पकाओ, उसके लिए गाय चाहिए पूरी गाय, जो उनको बुलाता वो एक गाय अलग से रखता था, ये तो उतर के अंदर चले जाते, वो गाय उसके सामने डाल दी जाती, वो चीर फाड़ करके खा जाता। अब ये बड़ी मुश्किल है, गरीब तो दावत कर नहीं सकता बेचारा कि हजरत तो खाएंगे एक रोटी और ये खाएगा गाय पूरी, तो इसका मतलब है कि पहले गाय का इंतजाम करो फिर हजरत को बुलाओ। खैर मशहूर था कि शेर पे जाते हैं, اور واقعی شعر پہ جاتے ہیں. ایک دن غوث پاک سے ملنے آ گئے اور یہ نہیں جانتے تھے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. جب وہ ملنے کے لیے آئے تو شیر پر بیٹھ کر آئے حسب معمول جیسا ان کا معمول. لوگوں نے کہا حضرت شیخ احمد آئے ہیں آنے دو. نہیں شیر پہ بیٹھ کر آئے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ شیر پہ جاتے ہیں. فرمایا پھر کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو کم کھاتے ہیں, ان کے شیر کے لیے گائیں چاہیے. فرمایا اچھا گائیں چاہیے؟ ہاں گائیں چاہیے. اچھا تو پھر ایسا کرو کہ استبل میں جو گائیں ہیں نا, جہاں گھوڑے اور سارے جانور بند ہیں بندے ہوئے, ایک گائیں جا کے اس کے آگے ڈال دو, وہ کھا لے گا. غوث اعظم نے فرمایا, مریدین نے کہا ٹھیک. وہ اترے اندر آ گئی اور ہو سکتا ہے کہ دل میں یہ ہو کہ میں غوث اعظم پہ روب ڈالوں کہ میں شیر پر آیا ہوں. ہو سکتا ہے, خیر وہ بھی بزرگ ہیں, میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں. ایک بزرگ اللہ کے ولی شیر پہ سواری کر, ہو سکتا ہے دل میں یہ پیدا ہوا ہو اس لیے شیر پہ گئے, ورنہ بغیر شیر کے بھی جا سکتے تھے کہ بھائی غوث کی بارگاہ میں چلے جاؤں, شیر پہ چلے گئے. فرمایا ایک گائے لے کر ڈال دو اس کے سامنے. یہ اتر کے اندر گئے اور مریدین گئے وہاں سے گائے لینے کے لیے. تو اس استبل کے دروازے پر ایک چھوٹا سا کتا جو غوث کی خانقاہ میں رہتا تھا وہ بیٹھا ہوا. جب گائیں لے کر آئے تو یہ کتا بھی ساتھ ساتھ آ گیا. جب کتا ساتھ ساتھ آیا, انہوں نے گائیں شیر کی آگے ڈالی اور شیر گائیں پہ جھپٹا. اس سے پہلے وہ چھوٹا سا کتا جو تھا وہ شیر پہ جھپٹ گیا اور شیر کو چیر پھاڑ کر کے ایک طرف پھینک دیا. مریدین حیران ہیں, یہ چھوٹا سا کتا شیر کو چیر پھاڑ کر کے پھینک دیا. اسی کو امام اہل سنت نے فرمایا تھا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اونچے اونچوں کے سر سے ہے سر بالا تیرا. غوث آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے در کا کتا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا, چھوٹے سے کتے نے چیر پھاڑ کر کے پھینک دی. اب حضرت کو پتا چلا کہ شیر تو گیا, غوث کے قدموں میں سر رکھ دیا, حضور میں معافی چاہتا. فرمایا جاؤ معاف کر دیا. غوث نے دکھا دیا, مت سمجھنا کہ ہم سے اونچا کسی کا درجہ ہے. اللہ نے غوثیت ہمیں عطا کی, مقام غوثیت ہمارے پاس ہے, خانقاہ میں تشریف فرما ہے, ابدال اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, نظر اٹھا کر دیکھی نیچے گر گئے, پرواز ختم. اب کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے, حضور کیا ہوا؟ حضور معافی چاہتے ہیں. فرمایا دیکھا نہیں نیچے کون بیٹھا ہے, چلے جا رہے اوپر اڑتے ہوئے؟ نہیں حضور معافی چاہتے ہیں. کہا جاؤ اڑ جاؤ. ادب سے نیچے سے گئے آگے جا کے اڑے. غوث کی شہنشاہی ہے, ان کی سلطنت, اللہ تبارک و تعالی نے بلند مقام عطا فرمایا. فرمایا ولو القیت سری فی بہار لسارا کل غورا فی الزوالی. اگر میں اپنی توجہ اپنا تصرف اپنی توجہ اپنا راز دریاؤں پر ڈالوں تو دریا ریت میں جذب ہو کر خشک ہو جائیں. ولو القیت سری فی جبال لدکت واختفت بین الرمال. تو یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائیں کہ جیسے یہ پہاڑ ہی نہ تھے. ولو القیت سری فوق میت. اگر میں اپنا راز کسی مردے پہ ڈالوں لقاما لقدرت مولا تعالی تو اللہ کی قدرت سے مردہ کھڑا ہو جائے. یہ میرا راز ہے, یہ میری شان ہے, یہ میری توجہ ہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ. اگر میں اپنا راز اپنی توجہ آگ پر ڈالوں تو وہ آگ بجھ جائے, ٹھنڈی ہو جائے, سرد ہو جائے, جیسا کہ کبھی جلی ہی نہ تھی. یہ غوث اپنی شان بیان کر رہے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفات نلت المنالی. اے میرے مرید مت خوف کر, میرے خدا نے مجھے بلند مقام عطا فرمایا. یہ ہے غوث اعظم کی شان. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بندہ اس کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے تو اس کی صفات کا مظہر ہو کر وہ ہر جگہ سے سنتا, ہر جگہ دیکھتا ہے, ہر جگہ تصرف کرتا ہے. پھر اس کی طاقت نہیں ہوتی, اللہ کی طاقت ہوتی. پھر وہ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتا, اللہ کی نظر سے دیکھتا, اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے, چلتا ہے, سنتا ہے, پھرتا ہے. دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی, شہر والوں کو اندیشہ ہوا, پانی بڑھ رہا ہے, बगदाद डूब जाएगा। पहुंचे गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर आपका जमाना और ये तूफान ये तुगयानी। फरमाया क्या हुआ? दरिया का पानी मुसलसल बढ़ रहा है, तुगयानी आ रही है, मौजे आ रही हैं, अपने हद से बहुत बाहर निकल आया और आगे बढ़ेगा, ये आबादी गर्क हो जाएगी। फरमाया अच्छा, अपना असा लिया और चल पड़े, तने तनहा चले जा रहे। लोग देख रहे हैं, हैरान है। गौसे आजम ने ना कोई दुआ की, ना कोई वजीफा पढ़ा, ना कोई चिल्ला काटा, ना कुछ किया, खाली असा लेकर चल दिए। पानी काफी दूर तक आ चुका था, पानी के अंदर चलते 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 उस मकाम तक पहुंचे जहां दरिया की असल हद थी, जहां तक वो पहले था वहां तक पहुंचे और अपना असा वहां पर गाड़ दिया। फरमाया बस इससे आगे मत बढ़ना, ये कहकर वापिस आ गई। देखने वालों ने देखा पानी सिमटना शुरू हो गया, पीछे होना शुरू हो गया, होते होते उसी मकाम पर रुका जहां असर गड़ा हुआ। उसी मकाम पर जहां असर गड़ा था, गौस ने बता दिया मेरी हुकूमत दरिया पर भी। तो वो अपनी जबान से नहीं बोलते, वो अल्लाह की जबान से बोलते, अल्लाह के कान से सुनते, अल्लाह की आंख से देखते। वो खुदा नहीं हो जाते, खुदा की सिफात का मजहर होकर हर जगह देखते हैं, हर जगह सुनते हैं, हर जगह तसर्रुफ करते। तो अगर इस हदीस को समझ लें तो इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन के तसर्रुफात, इनकी करामात, इनके कमालात, इनका कभी भी इनकार ना कर सकते। नहीं तुमने ये करामात बना ली, तुमने ये कर दिया, कैसे सुनेंगे, कैसे देखेंगे? अरे अपनी तरह क्यों समझ रहे हो, अपनी तरह क्यों समझ रहे हो? तुम नहीं देख सकते तो इसका मतलब है वो भी नहीं देख सकते। तुम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तुम जाहिर को देखते हो, वो जाहिर और बातिन को यकसा देखते हैं। तुम रोशनी में देखते हो, वो रोशनी अंधेरे में यकसा देखते हैं। तुम करीब देखते हो, वो दूर और नजदीक यकसा देखते हैं। तुम सिर्फ चेहरे को देखते हो, वो दिल को देखते हैं। इसीलिए अल्लाह वालों की सोहबत में जाओ तो अपने दिलों को साफ रख के जाओ, अपने कुलूब को पाक और साफ रखे। जबान पे कुछ और दिल में कुछ, कभी फैज नहीं मिलेगा, कभी फैज नहीं मिलेगा। दुनिया में तीन किस्म के लोग हैं और उनके पास जाओ तो तीन बातों का ख्याल रखो। एक है दुनियादार, एक है ओलामा और एक है सूफिया। दुनियादार के पास जाओ, अपने लिबास को साफ रखो, साफ सुथरा लिबास। किसी सरकारी ऑफिस में चले गए फटे पुराने कपड़े पहन के, धक्के देके निकाल दें, कौन फकीर आ गया, बाहर करो इसको। और सूट बूट पहन के गए, टाई वाई लगा के बाबू बन के गए सीधे सीधे, या चलो वो ना भी पहनो तो शलवार कमीज पहन के चले जाओ साफ सुथरा, या आइए तशरीफ लाइए। उसकी नजर तुम्हारे लिबास पर, वो नहीं जानता कितना काबिल है क्या है, वो लिबास को देख रहा है, बड़े अच्छा आदमी। ओलामा के पास जाओ, अपनी जबान को काबू में रखो, आलिम की नजर तुम्हारी जबान पर है। एक लफ्ज निकला, फतवा लगेगा, शरीयत के खिलाफ बोल गया, होता है ना, कोई जुमला निकला उनका ये बात गलत है, शरीयत के खिलाफ, उनका मनसब यही, उलमा का मनसब यही। लेकिन तीसरा दर्जा जो है इन सब से सुपर, अल्लाह वालों के पास जाओ, दिल को साफ रखो। अल्लाह के वली की नजर ना तुम्हारे लिबास पर है, ना तुम्हारी जबान पर है, तुम्हारे दिल पर है कि दिल में क्या लेकर आए। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला के जमाने में एक शख्स आया, आपकी तारीफ कर रहा है, अली आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तारीफों के पुल बांध दिए, जमीन आसमान के कुलाबे मिला दिए। हजरत अली सुनते रहे सुनते रहे, जब वो खामोश हुआ सिर्फ एक जुमला फरमाया, एक जुमला जिसमें सब कुछ है। फरमाया जो कुछ तू जबान से कह रहा है मैं वैसा नहीं हूं, जो कुछ तू जबान से कह रहा है मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन जो दिल में सोच रहा है उससे बेहतर हूं। कैसी बात कही, जबान से तो बड़ी तारीफें कर रहा है, मैं वैसा हुई नहीं, और दिल में वो कमतर समझ रहा था, अपने से कमतर, कहा उससे थोड़ा सा बेहतर। इसलिए जब भी अल्लाह के किसी वली की बारगाह में जाओ, अपने कल्ब को पाक और साफ रख के जाओ, जो जबान पर वही दिल में, जो दिल में वही जबान पर, तब फैज मिलेगा, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। तो हम इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता हैं, इसलिए हमें बाअमल होना चाहिए और हमारा जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। अगर जाहिर और बातिन एक है तो तब बंदा नेक है। तो अगर नेक बनना है तो जाहिर और बातिन को एक कर लो, जैसे अंदर वैसे बाहर, जैसे बाहर वैसे अंदर, जैसे जाहिर वैसे बातिन, इस तरह होना चाहिए। तो क्योंकि हम अहले तरीकत अहले मोहब्बत हैं, बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता हैं, इसलिए गौस की तालीम यही है, तमाम बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की तालीमात यही है कि अपने जाहिर और बातिन को एक रखो। दिल में कुछ, जबान पे कुछ, जाहिर कुछ, बातिन कुछ, ये मुनाफ़िकत है, ये मुनाफ़िकत है। जब किसी को मानो तो भरपूर तरीके से मानो, कहीं आपने कह तो दिया हम करेंगे वही जो हमारी मर्जी है, ये कैसे मानना होगा। अब कोई किसी से कहे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपके नाम पे मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन आपका कहना नहीं मानूंगा, ये कोई बात हुई? नाम पे जान कुर्बान है, कहना नहीं मानूंगा, फिर मानना क्या हुआ? ये मानना हुआ, ये मुनाफ़िकत हुई। मानना ये है कि जो कह दिया कर दिया, क्या इसमें नुकसान हो, क्या इसमें फायदा हो, इसमें कोई भी चीज हो, जब मान लिया तो मान लिया। मानने का मकसद ही यही है। जैसा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने माना, और कुरान ने उनके ईमान की मिसाल दी। कुरान कहता है आमनु कमा आमनन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान ले आए, और वो लोगों से मुराद सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन। ब्लैंक फेथ किया रसूल पर, जो इनकी जबान से निकल गया हक है और सच है, चाहे दुनिया भी कितने ही नुकसान नजर आए, लेकिन जब रसूल ने कह दिया हक है। इसी तरह बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन नायबान रसूल हैं, जो इनकी जबान से निकल जाएगा वो भी हक है और वो सच। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम और ये मर्तबा उन्हें अता फरमाया। तो आज हम गौस की बारगाह में हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए इसलिए जमा हुए हैं कि हम अपना ताल्लुक मजीद मुस्तहकम करें और उनकी निगाह करम अपनी जानिब करें, इसलिए कि हमें पता है जहां उनका जिक्र होगा वहीं उनकी निगाह होगी, जहां जिक्र होगा वहीं उनकी निगाह करम होगी। वो अपनी आंख से नहीं अल्लाह की अता की हुई आंख से देख रहे हैं, अल्लाह की अता की हुई नजर से देख रहे हैं। लिहाजा पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, जहां जहां की अरबी शरीफ हो रही है, जहां जहां मेरे गौस का जिक्र हो रहा है, मेरा यकीन है अपनी निगाहें गौसियत से उन सबको देख रहे, और जो जो भी महफिल में आया खाली नहीं जाएगा, फैजान लेकर जाए। आखिरी बात यह है कि इन महाफिल के मुनक्किद करने का मकसद महज ये नहीं कि हम जिक्र सुने और उसके बाद उसको अपने कानों से निकाल दें, इधर से सुनकर उधर से निकाल दें। इस जिक्र मुबारक को सुने, उसको याद रखने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। जब तक अमल नहीं होगा, जब तक उनकी मोहब्बत दिल में नहीं होगी, जब तक इस्तेकामत के साथ इन तमाम चीजों पर अमल नहीं होगा, उस वक्त तक निजात नहीं है। निजात उस सूरत में है कि इसको सुना भी जाए, उस पर पूरी इस्तेकामत के साथ अमल भी किया जाए, फिर देखो कि गौस का फैजान किस तरह मिलेगा। और इस दुनिया में अगर सच्ची मोहब्बत है तो फिर समझ लो कि इंशाअल्लाह आखिरत में उन्हीं के साथ। एक हदीस शरीफ पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लौ काना अब्दैन तहाब्बा फिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, दो शख्स होंगे जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, वाहिदुन फिल मशरिक व आखरु फिल मगरिब, एक मशरिक में रहता होगा एक मगरिब में, यानी एक महफिल में नहीं, एक जगह नहीं, एक शहर में नहीं, इतनी दूरी के मशरिक और मगरिब की दूरी, वाहिदुन फिल मशरिक व आखरु फिल मगरिब, एक मशरिक में एक मगरिब में, लेकिन मोहब्बत इसलिए करेगा कि ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है इसलिए मोहब्बत करेगा। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, लजमाहुल्लाहु बैनहुमा यौमल क़यामा, उन दोनों को एक साथ जमा फरमा देगा, उस गुनाहगार को वली के साथ खड़ा कर देगा। अब वो अर्ज करेगा, मौला मैं गुनाहगार, ये नेकोकार, मैं एक बंदा, ये तेरा वली, मुझे कैसे ये मकाम मिला कि तूने अपने वली के साथ मुझे खड़ा कर दिया। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खालिक कायनात इरशाद फरमाएगा, तूने इस दुनिया में मेरे वली से सिर्फ मेरी वजह से मोहब्बत की, मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि यहां तुम दोनों जुदा जुदा रहो, मैंने दोनों को एक कर दिया, अब तुम दोनों साथ ही हो। और एक दूसरे मकाम पर सरकार ने फरमाया, अलमरु मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ हो, قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. الحمدللہ ہمیں غوث جیلانی سے محبت ہے, مخدوم سمنانی سے محبت ہے, مجدد الف ثانی سے محبت ہے, داتا گنج بخش علی ہجویری سے محبت ہے, بابا فرید سے محبت ہے, قطب الاقطاب سے محبت ہے, سلطان الہند سے محبت ہے. جس کو دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. قیامت میں غوث کے ساتھ, قیامت میں انہیں بزرگان دین کے ساتھ, قیامت میں اشرف المشائخ و حضرت قطب ربانی کے ساتھ. اس لیے اس دنیا میں ان سے سچی محبت کیجئے, اور سچی محبت کرنے کے بعد یقین کر لیجئے کہ انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین اور یہ کاملین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی اتباع, ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.